ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1,00,000 रेहड़ी पटरी वालों को ऋण वितरित किए। गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नागरिक संशोधन अधिनियम CAA पर दिए गए बयान पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी। दिल्ली के शाहदरा में आज एक घर में भीषण आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बिना मोटर वाले 2 और 3 पहिया वाहनों को द्वारका एक्सप्रेसवे का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए जीवन रेखा साबित हुई है। उन्होंने आज दिल्ली में पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को संबोधित किया। श्री मोदी ने इस योजना के तहत 1,00,000 रेहड़ी पटरी वालों को ऋण वितरित किए। उन्होंने कहा कि आम जनता ने कोविड के दौरान रेहड़ी पटरी वालों की ताकत देखी।
आज देश के कोने कोने से जो साथी जुड़े हैं उनको भी इस पीएम स्वनिधि का एक विशेष लाभ। आज 1,00,000 लोगों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री ने रेहड़ी पटरी वालों और सड़क किनारे दुकानदारों को समाज में उनके योगदान के लिए बधाई दी। इस सभा में श्री मोदी ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की आधारशिला भी रखी। ये लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर होंगे, जिनकी कुल लंबाई 20 किलोमीटर से अधिक होगी। प्रस्तावित गलियारों से कनेक्टिविटी में सुधार और यातायात सुगम होगा।
आज यहां दिल्ली मेट्रो के लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक मेट्रो प्रोजेक्ट का भी विस्तार का शिलान्यास हुआ है। ये दिल्ली के लोगों के लिए डबल तोहफे की तारीख है।
प्रधानमंत्री मोदी के अलावा सभा में आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी मौजूद थे। गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA पर दिए गए बयान पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल CAA का विरोध अपने तथाकथित भ्रष्टाचारों से ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री केजरीवाल का ये आरोप कि भारत में प्रवासियों के आने से अपराध बढ़ जाएंगे गलत है, क्योंकि ये प्रवासी पहले से ही भारत में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि CAA कानून के माध्यम से इन्हें सिर्फ नागरिकता प्रदान की जाएगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे। उनको मालूम नहीं है कि सारे लोग आ चुके हैं, भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है, और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते? रोहिंग्या का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं।
गृहमंत्री के बयानों का खंडन करते हुए श्री केजरीवाल ने कहा कि पड़ोसी देशों से आ रहे प्रवासियों से देश में गरीबी की स्थिति और गंभीर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे सुरक्षा व्यवस्था बदहाल हो सकती है और आपराधिक मामले बढ़ सकते हैं।
अगर आपके घर के सामने सड़क के उस पार पाकिस्तान से आए हुए लोगों की झुग्गियां बसा दी गई, क्या ये आपको मंजूर होगा? कौन लोग हैं जो ये पाकिस्तान से आ गए? कौन लोग हैं जो ये बांग्लादेश से आ गए? अगर वहां पे आए हुए लोगों को बसा दिया गया, अपने आप को उनके बीच में सुरक्षित महसूस करोगे? और कौन होंगे ये लोग? क्या देश सुरक्षित होगा? पता नहीं कैसे लोगों को पाकिस्तान ही भेज देगा बहुत सारे लोगों को हमारे देश के अंदर। क्या हमारा देश सुरक्षित होगा? चारों तरफ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं पैदा हो जाएगी? इसी को लेकर मैं चिंतित।
एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। समिति ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में ये रिपोर्ट सौंपी। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि सभी सुझावों पर सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद इस समिति ने देश भर में सभी चुनाव एक साथ कराने के लिए दो चरणों वाली प्रक्रिया की सिफारिश की है। एक रिपोर्ट।
इस उच्च स्तरीय समिति का गठन पिछले साल सितंबर में किया गया था और इसके गठन के बाद से ही यह समिति लगातार राजनीतिक दल, विशेषज्ञों और आम नागरिकों के साथ व्यापक विचार विमर्श कर रही थी। एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार और सुझाव दिए, जिनमें से 32 दलों ने इसका समर्थन किया। इसके अलावा आम नागरिकों से 21,000 से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई और लगभग 80% लोगों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया। औद्योगिक संगठन CII, फिक्की और SHM जैसे व्यापारी संगठनों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सभी के साथ व्यापक विचार विमर्श करने के बाद 191 दिनों में तैयार की गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के शाहदरा में आज एक घर में भीषण आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अग्निशमन अधिकारियों के अनुसार आग सुबह लगी और यह घर के पार्किंग क्षेत्र में फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 9 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। अग्निशमन विभाग ने कहा कि 18 लोगों को बचाया गया है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बिना मोटर वाले 2 और 3 पहिया वाहनों को द्वारका एक्सप्रेसवे का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि तेज गति वाले वाहनों की आवाजाही से धीमी गति के वाहनों को खतरा होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि प्रतिबंधित वाहन एक्सप्रेसवे के दोनों ओर सर्विस लेन का उपयोग कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने पेटीएम फास्टैग उपयोग करने वालों को सलाह दी है कि 15 मार्च से पहले किसी अन्य बैंक के फास्टैग की सुविधा प्राप्त करें। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि इससे फास्टैग उपयोग करने वालों को जुर्माने से बचने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते समय दुगने शुल्क के भुगतान से बचने में मदद मिलेगी। पेटीएम पेमेंट बैंक पर प्रतिबंधों के संबंध में रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार 15 मार्च के बाद पेटीएम फास्टैग को रिचार्ज या टॉपअप नहीं किया जा सकेगा, लेकिन इस तिथि के बाद भी पेटीएम फास्टैग में बची राशि का उपयोग किया जा सकेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील सामग्रियों वाले 18 OTT प्लेटफॉर्म बंद कर दिए हैं। इनमें ड्रीम्स फिल्म्स, हंटर्स, हॉट शॉट्स, VIP, प्राइम प्ले और अनकट अड्डा शामिल हैं। इन मंचों के साथ जुड़े 19 वेबसाइटों, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया खातों पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक रिपोर्ट।
यह निर्णय मीडिया तथा मनोरंजन, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों से संबंधित डोमेन विशेषज्ञ और अन्य मंत्रालयों के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत लिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इन मंचों की जिम्मेदारी को लेकर कहा कि ये मंच रचनात्मक अभिव्यक्ति की आड़ में अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार न करे। मंत्रालय ने कहा कि इन मंचों पर उपलब्ध सामग्रियों में अधिकतर अंश अश्लील और महिलाओं को आपत्तिजनक तरीके से चित्रित करने वाले पाए गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिख नववर्ष के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने वाहेगुरु की असीम अनुकंपा से सभी के कल्याण और समृद्धि की कामना की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि गुरुओं के ज्ञान के प्रकाश से समाज को मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आज विश्व किडनी दिवस है। इस वर्ष किडनी दिवस का विषय है सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य। एम्स ने दिल्ली के किडनी रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर दीपांकर भौमिक ने हमसे बातचीत में लोगों को किडनी की बीमारी का शीघ्र पता लगाने के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच कराने का सुझाव दिया।
जब 50% किडनी खराब हो चुके होते हैं तब जाके पैरों में सूजन, ब्लड प्रेशर बढ़ना, हीमोग्लोबिन कम होना, हड्डियों कमजोर होना, रात में बार बार उठना, ये 5-6 लक्षण है इससे पता चलेगा, हो सकता है गुर्दे में प्रॉब्लम है, लेकिन इसका पक्का निदान तभी होगा जब आप पेशाब का और खून का जांच, बहुत जरूरी है कि प्रिवेंशन किया जाए, इसीलिए वेट नियंत्रण में रखना चाहिए, 18 से 23 बीएमआई वही बेस्ट है, खान पान का नियंत्रण रखें, एक्सरसाइज करें, चीनी कम खाएं ताकि मोटापा ना हो, नमक कम लें हमेशा, पानी ज्यादा पिए, कम से कम 2 लीटर पेशाब होना चाहिए।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी राजधानी के चाणक्यपुरी क्षेत्र के पीएसओआई क्लब में शनिवार से 2 दिवसीय फ्लावर फूड उत्सव का आयोजन कर रही है। इस उत्सव में जनता के लिए प्रवेश दोपहर 12 बजे से शाम 9 बजे तक है। परिषद ने बताया है कि इस उत्सव में फूलों पर आधारित व्यंजन मौजूद होंगे। ट्यूलिप, गुलाब और पुष्प उत्सव के बाद एनडीएमसी द्वारा इस वर्ष का यह चौथा बड़ा फूलों से संबंधित उत्सव आयोजित किया जा रहा है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने घरेलू और विश्व में वैज्ञानिक उपलब्धियों में भारत की भूमिका की सराहना की है। नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी पैनोरामा के एक दशक शीर्षक की रिपोर्ट जारी करते हुए डॉ जितेन्द्र सिंह ने चंद्रयान और आदित्य L1 जैसी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की क्षमता का उल्लेख किया। डॉ सिंह ने भारत के गगनयान मिशन पर गर्व करते हुए कहा कि इस मिशन ने अंतरिक्ष अन्वेषण में देश की प्रसिद्धि और बढ़ाई है। उन्होंने जन स्वास्थ्य विशेषकर वैक्सीन के विकास में भारत के नेतृत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न के उत्थान की भी सराहना की। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। इस वर्ष जनवरी में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भूटान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री शेरिंग तोबगे मुंबई भी जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और भूटान के बीच सभी स्तरों पर परस्पर विश्वास, सद्भावना तथा समझ बूझ पर आधारित मित्रता और सहयोग का रिश्ता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2023 में आई बाढ़ के कारण कपास फसल को हुए नुकसान से प्रभावित 12 जिलों के किसानों के लिए 87,95,00,000 रूपये की क्षतिपूर्ति राशि जारी की है। इन जिलों में भिवाणी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत शामिल हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों के मुकाबले आज वायु गुणवत्ता में हल्की गिरावट आई। आज शाम 4 बजे तक वायु गुणवत्ता का स्तर मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार समग्र दिल्ली क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 195 रिकॉर्ड किया गया। 0 से 50 के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब माना जाता है। दिल्ली में आज दिन के समय मौसम साफ रहा और धूप खिली रही, हालांकि शाम के वक्त बादल छाने लगे और सर्द हवाएं भी चलने लगीं। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहते हुए 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहते हुए 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1,00,000 रेहड़ी पटरी वालों को ऋण वितरित किए। गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA पर दिए गए बयान पर तुष्टीकरण से राजनीति का आरोप लगाया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी। दिल्ली के शाहदरा में आज एक घर में भीषण आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बिना मोटर वाले 2 और 3 पहिया वाहनों को द्वारका एक्सप्रेसवे का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।